సో శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 7 అధ్యాయ 4 శ్లోక సంఖ్య 26 బోర్డ్ పే లిఖా హై లేకిన్ 24-25 హమ్ పడేంగే వైసే ఔర్ 26 హమ్ రిసైట్ కరేంగే శ్లోక సంఖ్య 24 ఔర్ ఇస్ అధ్యాయ కా నామ హై బ్రహ్మాండ మే హిరణ్యకశిపు కా ఆతంక శ్లోక నంబర్ 24 హై तेषा आविर्भूतवाणी अरूपा मेघानि स्वना सन्नाधयन्ति ककुबः साधूनां भयंकरी ट्रांसलेशन तब उन सबों के समक्ष दिव्य वाणी प्रकट हुई जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी। ये वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय दूर करने वाली थी। श्लोक संख्या 25 मां भयेष्ट विभूत श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मार्गदर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। उसका जो ट्रांसलेशन है 25-26 का एक साथ है तो अभी हम श्लोक संख्या 26 पढ़ेंगे जो बोर्ड पे है। ज्ञातम् एतस्य दौरात्म्यं दैत्यापदस्य यत् तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षितः। ज्ञात्मेतस्य दौरात्म्यं दैत्यापस्तस्य तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत। ज्ञात्मेतस्य दौरात्म्यं दैत्यापस्तस्य तस्य शान्तिं करिष्यामि तस्य दौरात्म्यं दैत्यापसदस्य तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत। ज्ञातं ज्ञात एतस्य इसका दौरात्म्यं दैत्य अपस्तस्य महान असुर हिरण्यकशिपु का यत् जो तस्य उसकी शांतिम समाप्ति करिष्यामि करूंगा कालम काल समय की तावत् प्रतीक्षा करो। अनुवाद भगवान की वाणी इस प्रकार गुंजायमान हुई, हे परम विद्वानों डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों को आशीष देना है। मैं हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों से परिचित हूं और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा, तब तक तुम मेरी धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। तात्पर्य कभी कभी लोग ईश्वर के दर्शन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। इस श्लोक में आगत मत दर्शनम शब्द पर विचार करते हुए ध्यान देना होगा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत भक्त्या मां भी जानाती। दूसरे शब्दों में भगवान को समझने या उनका दर्शन करने अथवा उनसे बातें करने का सामर्थ्य मनुष्य की भक्ति की संबंधी प्रगति पर निर्भर करता है। भक्ति के 9 प्रकार के विभिन्न कार्यकलाप होते हैं, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। चूंकि ये भक्ति कार्य श्रेष्ठ होते हैं, अतएव मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करने, उनका दर्शन करने एवं उनके गुणगान करने में कोई अंतर नहीं। निसंदेह सभी विधियां हैं उनके दर्शन की, क्योंकि भक्ति में किया गया प्रत्येक कार्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क का साधन होता है। भगवान की वाणी की गूंज समस्त भक्तों के समक्ष प्रकट हुई, अतः इस वाणी को उच्चारित करने वाला व्यक्ति यद्यपि अदृश्य था तो भी वे भगवान से भेंट कर रहे थे या उनका दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वे सभी स्तुति कर रहे थे और भगवान की वाणी वहां पर विद्यमान थी। भौतिक जगत के नियमों से सर्वथा विपरीत भगवान के दर्शन करने, उनकी स्तुति करने तथा उनकी दिव्य वाणी सुनने में कोई अंतर नहीं होता। अतएव शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गायन करके ही परम प्रसन्न रहते हैं। ऐसा महिमा गायन कीर्तन कहलाता है। कीर्तन करना और हरे कृष्ण ध्वनि का श्रवण वास्तव में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मनुष्य को स्थिति का अनुभव करना चाहिए, तभी वह भगवान के कार्यकलापों की परम प्रकृति को समझ सकेगा। ज्ञातमितस्य दौरात्म्यं दैत्यापसदस्य यत्तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षितः। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु ने देवताओं के 10,000 साल तपस्या की, दैट इज अराउंड अर्थ के हो गए 36,500 समथिंग लाइक दैट। इतने सालों तक उसने निर्जला रखते हुए तपस्या की, जैसे कि आप एक दिन निर्जला रखते हैं साल में, तो उस दिन आपको ज्ञात होता है, उसके अगले दिन सुबह जब आप पानी पीते हैं तो आपको ज्ञात होता है कि भगवान सही कहते हैं रसम सुखते आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, और तब पता चलता है कि एक्चुअल में पानी की क्या मूल्य क्या है उसका, वैसे नहीं पता चलता कि डेली पीते रहते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए हिरण्यकश्यपु ने इतनी तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, और वरदान प्राप्त करने के बाद उसने क्या किया, क्योंकि वो वर्चुअली ये समझ रहा था कि मैं अब अमर हो गया हूँ, मैंने ब्रह्मा जी को बेवकूफ बनाकर अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है। तो क्योंकि उसने कठोर तपस्या की थी तो उस तपस्या का फल वो भोग रहा था। जो भी हिरण्यकश्यपु ने किया, जो भी उसको फैसिलिटीज मिली, जो भी उसने ऑफकोर्स उसने उस फैसिलिटीज का गलत उपयोग किया, लेकिन जो भी फैसिलिटीज उसको मिली वो उसकी तपस्या का प्रभाव था। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया कि जितने भी लोग हैं, 3 लोग बोलते हैं राइट, मिडल में जो है वो भूलोक, ऊपर के 6 लोग, नीचे के 7 लोग, इन सब पर हिरण्यकश्यपु ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। जितने भी गंधर्व लोक हैं या फिर एक प्रॉपर मेंशन करते गरुड़ लोक, ये गरुड़ वो गरुड़ नहीं विष्णु जी का गरुड़, बट वहां पर बहुत बड़े बड़े पक्षी रहते हैं, या फिर सर्प लोक है, पितृ लोक है, स्वर्ग लोक है, जग लोक, महर लोक, तप लोक, नीचे के लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पदाव, इन सब पे हिरण्यकश्यपु का पूरा शासन हो गया था। और उसने अपना जो सेंटर था, ऑपरेटिंग ऑफिस, जैसे प्रभुपाद बोलते बॉम्बे इज माय ऑफिस, तो हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग लोक को अपना ऑफिस बनाया। तो उसमें स्पेशली जो नंदन कानन फॉरेस्ट, जहां पर देवता लोग विचरण करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, तो वहां पर उसने, और इंद्र का जो मेन पैलेस था जिसको विश्वकर्मा ने स्वयं डिजाइन किया है, उस पैलेस को उसने अपना ऑफिस बनाया, तो वहां पर वो बैठता था और उसके दिशानुसार सब देवी देवता कार्य करते थे। इमेजिन, ऐसा बताया जाता है कि हिरण्यकश्यपु अगर जोर से अगर कर देता था तो देवता लोग पेशाब करते थे धोती में, इट्स लाइक दैट। तो वो उसने अपने हिसाब से जिस तरह वो उसको चाहिए था उस प्रकार से, अर्थ पर भी आता था वो, धरती पर भी विचरण करने आता था, बिकॉज सभी लोग उसके अंडर थे, तो यहां पर अगर गर्मी ज्यादा है तो वो सूर्य देवता को इशारा करता था तो वो गर्मी कम कर देते थे, अगर ठंड ज्यादा हो गई है तो अकॉर्डिंगली, जैसे मैंगो का सीजन होता है गर्मियों में, लेकिन उस समय सर्दियों में भी आम का फल मिल रहा था, मतलब 12 महीने हर फ्रूट की प्राप्ति हो रही थी, 12 महीने एक जैसा मौसम, बढ़िया मौसम, हर चीज की प्राप्ति, जब जिसको जो उसको चाहिए होता था उस प्रकार से पेड़ पौधे पक्षी जीव देवी देवता सब उसको प्रोवाइड कर रहे थे। इवन कि जो जिनको बोला जाता है त्रिदेवता, तीन डीटीज में मेन प्रेजाइडिंग डीटी ब्रह्मा विष्णु महेश, इवन वो लोग भी आकर हिरण्यकश्यपु की स्तुति करते थे, राइट, बिकॉज की तपस्या के प्रभाव से, बिकॉज ही डिजर्व, उस समय वो उसका डिजर्विंग पीरियड था। जैसे आप कोई पुण्य कार्य करते हैं तो आप फिर थोड़ी देर के लिए उसके परिणाम स्वरूप आप सुख भोगते हैं, तो जब तक आपके भाग्य में वो सुख है वो प्रारब्ध का कोई आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन जब वो आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है फिर अगर उसमें जो आपने गलत कार्य किए हैं अगर उस सही टाइम में यू हैव टू फेस द रिएक्शन आल्सो। तो जैसे आजकल के साइंटिस्ट भी वो क्या है, दे आर द डिसाइपल्स ऑफ हिरण्यकश्यपु, जो मॉडर्न साइंस है साइंटिस्ट है वो क्या है, टाइनी हिरण्यकश्यपु, छोटे हिरण्यकश्यपु। जैसे आजकल के साइंटिस्ट भी यही करते हैं ना, अब क्या किया अभी गर्मी ज्यादा है तो क्या लगा दिया, एसी बना दिया, राइट, अगर ठंड ज्यादा है तो हीटिंग सिस्टम इज देयर, राइट। अभी आपको मोस्टली आउट ऑफ सीजन सब्जियां मिल जाती हैं या आउट ऑफ सीजन फ्रूट मिल जाता है, मिलता कि नहीं मिलता, अभी आजकल भिंडी भी मिलती है मार्केट में, आई सरप्राइज कि भिंडी गर्मियों की सब्जी है, अभी सर्दियों में उसका क्या काम है, लेकिन अभी 12 महीने आपको वो सब्जियां मिल जाती है मोर लेस सेम, जैसे हिरण्यकश्यपु के टाइम में था कि किसी भी मौसम में कोई भी चीज मिल जाती थी। तो उसी तरह से ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं दे आर द डिसाइपल्स ऑफ हिरण्यकश्यपु, तो उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो हिरण्यकश्यपु जस्ट अ स्नैप ऑफ फिंगर, उसके पास सब कुछ था हिरण्यकश्यपु के पास, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इंद्रिय विषयों में इंद्रिय भोग में लगा है और इंद्रिय विषय वस्तुओं के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती, राइट, कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती, एंजॉयमेंट नहीं दे सकती। सुबह यहाँ पर रबड़ी या खीर मिलती है ना सुबह सुबह, राइट, सुबह सुबह मंगल आरती के बाद महाप्रसाद मंगल आरती वाली खीर होती है, राइट, कितने लोगों को खीर बनानी आती है, ओके गुड। तो माता जी पीछे बैठे हैं, आप बता सकते हैं खीर में क्या क्या डाला जाता है, दूध, चीनी, चावल, ड्राई फ्रूट्स, इलायची, बस दैट्स ऑल, एनीथिंग एल्स, केसर, मखाने भी डाल सकते हैं और भी कई कुछ डाल सकते हैं, बट कभी आपने ऐसी कोई खीर बनाई है कि जिसमें आप कुछ इंग्रेडिएंट डालते हैं जिसका नाम हो एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट कि ये 100 ग्राम एंजॉयमेंट इसमें डाल रहे हैं, ऐसा कोई मसाला मिलता है मार्केट में एंजॉयमेंट करके हो नाम जिसका आप उसको खाने में डालो तो एंजॉयमेंट आ जाती है, ऐसा मिलता कुछ नहीं ना, बट जब आप वो खीर खाते हैं यू फील हैप्पी, राइट, चलो यहाँ तो आपको प्रसाद मिल रहा है, लेकिन गर्मी लाइफ अगर कोई वैसे भी कोई स्वीट खाता है उसको खुशी मिलती है खा के, स्वीट है, स्वीट एक स्पेशल चीज गिनी जाती है, लेकिन उसमें कोई इंजॉयमेंट करके कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया, बट यू फील एंजॉयमेंट, व्हाई, बिकॉज ऑफ टेस्ट, बिकॉज ऑफ टेस्ट। नाउ एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, आपका नाम रोहित, रोहित लोग मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं अभी, तो आपका फेवरेट स्वीट कौन सा, हलवा, ओके, तो हलवा इनका फेवरेट स्वीट है, तो मान लीजिए कि ये हलवा खाने लगे, हलवा इनके सामने और जीभ में पानी आ गया और ये हलवा खाने लगे हैं, और इनका फ्रेंड आके इनको बोलता है कि रोहित तुम फेल हो गए एग्जाम में, यू फेल द सेमेस्टर, क्या होगा? हलवा खाओगे? सो द एक्चुअल इंजॉयमेंट लाइज इन द माइंड, नॉट इन द ऑब्जेक्ट. कोई भी भौतिक वस्तु में इंजॉयमेंट नहीं है. इंजॉयमेंट कहां पर है? आपके माइंड में. यू फील लाइक आई एम एंजॉइंग, बट देयर इज नो एक्चुअल इंजॉयमेंट. और अगर आप इंजॉयमेंट करते भी हो भौतिक वस्तुओं के साथ, तो होगा क्या? एक टाइम के बाद यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड. एक इंग्लिश में सिंपल बोलते हैं, हाउ लॉन्ग यू कैन एंजॉय एंड हाउ मच यू कैन एंजॉय, कितनी देर तक और कितना. आप ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, राइट? गुलाब जामुन पसंद है किसी? गुलाब जामुन के लिए आपका नाम शोभराज. तो अगर गुलाब जामुन कितने खा सकते हैं एक बार में, जब फर्स्ट गुलाब जामुन खाते हो तो कितना बढ़िया लगता है? लगता है ना अच्छा? फिर कितने खा सकते हैं आप? 3, 4, 5. ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? और ज्यादा, फिर भी चलो खाते जा रहे, कोई नहीं, फिर क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन लग सकते हैं. चलो एक और तरीका कर देते हैं. हाँ चलो एक और चीज कर देते हैं, आपका पेट खराब ना हो तो हम एक बाईपास कर देते हैं यहां से. क्या आप गुलाब जामुन खाओ इधर से बाहर? अंदर जा ही नहीं रहा, यहीं से बाहर आ जाएगा, ठीक है? तब भी कितने खा सकते हो? यू कांट एंजॉय. भगवान इसलिए भगवद गीता में कहते हैं कि जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख जो शुरू में सुख की भांति प्रतीत होता है, वही चीज आपके दुख का कारण बनती है, वही चीज आपके दुख का कारण बनती है. तो इसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु भी सेटिस्फाइड नहीं था, जबकि वो तीनों लोगों का स्वामी था, हर चीज उसके पास थी, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं था. जैसे वामन देव जब गए थे बलि महाराज के पास, तो बलि महाराज ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता को क्या चाहिए बताइए. तो बलि वामन देव कहते हैं कि मुझे 3 steps ऑफ लैंड चाहिए, बस जितना मैं अपने 3 पैरों से मेजर कर सकूं मुझे उतनी चाहिए. तो बलि महाराज कहते हैं, दिस इज इंसल्ट टू मी, आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो. मेरे पास इतना राज्य साम्राज्य, इतने में लोग मेरे पास हैं, आप सिर्फ 3 steps ऑफ लैंड, आप बोलो तो मैं पूरी कंट्री दे सकता हूँ आपको. ये क्या 3 steps ऑफ लैंड? जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स के पास जाओ, बिल गेट्स आपको बुलाए कि मैं इस कॉन के लिए डोनेशन देना चाहता हूँ, और आप बिल गेट्स के पास जाओ और ब्लैंक चेक आपके सामने रखते हो कि जो चाहिए भर लो, और आप भर रहे हो $100. एक तरह से इंसल्ट टू बिल गेट्स, क्योंकि $100 कुछ नहीं है उसके लिए. ऐसा बोला जाता है कि अगर उसके $500 भी गिर जाए उसको उठाने की जरूरत नहीं, जितना उसको उठाने में टाइम लगे उतने वो कमा लेगा $500. तो उसी प्रकार से बलि महाराज को थोड़ी इंसल्ट फील हुई कि मेरे पास आकर से लोग इतना सा मांग रहे हैं, इट्स नॉट प्रॉपर. तो वामन देव कहते हैं कि जो व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर वश नहीं है, उस व्यक्ति को अगर तीनों लोगों की संपत्ति भी दे दी जाए तो फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता. तो यही केस था हिरण्यकश्यपु का, he was not at all satisfied, he was not at all satisfied, क्योंकि मन एक ऐसी वस्तु है कि उसका, उसके पास कोई फुल स्टॉप पॉइंट नहीं होता कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई हो गया. आई एम टॉकिंग इन भौतिक, भौतिक अगर हिसाब से देखा जाए तो देयर इज नो फुल स्टॉप, राइट? हमेशा ऐसा लगेगा थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया. इसलिए जस्ट 1 mantra इज देयर टू सेटिस्फाई. वो जो थोड़ा सा ब्लैंक रह जाता है उसको भरने के लिए एक मंत्र दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, दैट्स ऑल. We know all that, right? So, तो इस प्रकार से जब सभी लोगों के जो लोग थे जब वो इस प्रकार से पीड़ित थे हिरण्यकश्यपु के आतंक से पीड़ित हो चुके थे तो उन्होंने मिलकर भगवान को प्रार्थना की तो उनके प्रार्थना के रिस्पॉन्स में भगवान ये बोल रहे तो ये जो आकाशवाणी हुई तो उनकी प्रार्थना के रिस्पॉन्स में ये आकाशवाणी हुई तो भगवान उनको कहते हैं कि तुम आप थोड़ा सा धैर्य रखो प्रतीक्षा करो मैं जल्द ही प्रकट होऊंगा और लेकिन तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो तो मेरा श्रवण कीर्तन करते रहो और प्रतीक्षा करो धैर्य रखो मैं जल्दी ही प्रकट होऊंगा मुझे पता है हिरण्यकश्यपु क्या कर रहा है लेकिन आई विल कम फॉर श्योर देखिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं और जब आप भी कोई प्रेयर करते हैं भगवान को तो कभी ये मत सोचना कि भगवान सुनते नहीं हाँ उस पर एक्शन कब लेंगे वो भगवान की मर्जी है दैट इज अप टू कृष्णा यहां भी जैसे बोला कि मैंने सुन लिया आपकी प्रेयर बट आप धैर्य रखो मैं आऊंगा पर आप प्रतीक्षा करो उसी प्रकार से हम उस लेवल पे नहीं कि डायरेक्टली भगवान हमसे बात करें कि यहां से कृष्ण बलराम बोलेंगे वेट वेट बट स्टिल अगर हम कोई भी प्रे भगवान को करते हैं प्रेयर करते हैं तो भगवान सुनते हैं उसको एक्शन होगा नहीं होगा एक्शन होगा जरूर ये भी गारंटेड एक्शन भी जरूर होगा लेकिन कब होगा ये पता नहीं वो भगवान जानते हैं उनकी अपनी फ्री विल है और वो ये भी देखते हैं कि हमारे हमारे कर्मों के हिसाब से वो भी देखते हैं कि सिस्टम क्या है कब हमें वो चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं है वो सारा सिस्टम कैलकुलेट करके भगवान उसके हिसाब से एक्ट करते हैं बट अगर कुछ भी प्रे आप करते हैं भगवान सुनते हैं तो यहाँ पर तो प्रभुपाद यहाँ परपट में लिखते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने दर्शन किया भगवान का एक तरह से बोलेंगे एक अदृश्य व्यक्ति से वाणी उन्होंने सुनी लेकिन फिर भी दर्शन कैसे किया क्योंकि भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर है There is no difference. जैसे भगवत गीता भगवान की वाणी है तो भगवत गीता के जो श्लोक है they're not different from Krishna. They're not different. भगवत गीता is not different from Krishna. भगवान का प्रसाद भी भगवान से अभिन्न है तो भगवान की वाणी जो है इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण ये सामने जो अर्चा वगैरह आप देखते हैं एक बार श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से पूछा कि अर्चा विग्रह के किस भाग में भगवान रहते हैं अर्चा विग्रह के किस भाग में भगवान रहते हैं एनी आइडिया हाँ जी माता जी समस्त भाग में रहते हैं एनीबडी एल्स यस यस मी सर Yes, is Krishna only standing in front of you? तो वो शिष्य लोग guess मार रहे थे कोई कह रहे यहाँ कोई कहाँ प्रभु कहते हैं is Krishna standing in front of you? It's not that DT के अंदर कृष्ण है is Krishna ही खड़े हैं आपके सामने तो इस प्रकार से चलते हम भगवान का दर्शन करते हैं अभी जब दर्शन कर रहे हैं भगवान का या भगवान के विषय में सुनते हैं श्रीमद् भागवतम से या भगवद गीता से तो ये भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं है भगवान की वाणी में और भगवान के दर्शन में कोई अंतर नहीं है इस प्रकार से उन्होंने वैसे तो दिखाई नहीं दिया व्यक्ति कौन बोल रहा है भगवान बोल रहे हैं वो दिखाई नहीं दिए उनको लेकिन भगवान की वाणी उन्होंने सुनी तो इस प्रकार से उन्होंने दर्शन किया भगवान का दिस इज द वे तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो डिपेंड करता है आपकी भक्ति के ऊपर कि आपकी भक्ति में कितनी प्रोग्रेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भगवान को किस रूप में देख सकते हैं जैसे अभी आपको भगवान दिख रहे हैं पर अभी वन वे कम्युनिकेशन होता है आप तो प्रेयर्स ऑफर कर देते हो मंत्र भी पढ़ देते हो कहीं कुछ कर देते हो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है ना उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि क्या मतलब कुछ तो बात करो कुछ तो होना चाहिए तो उसे प्रॉब्लम लिखते हैं वो डिपेंड करता है आपकी भक्ति के लेवल के ऊपर कि वेदर यू आर एबल टू हियर कृष्णा साउंड और नॉट इसलिए, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद यहां मेंशन करते हैं भक्ति की नौ विधियों के बारे में, जो प्रहलाद महाराज इसी स्कंद में बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो इसमें जो श्रवण है, श्रवणम है, दैट इज द बेसिक, प्रभुपाद लिखते हैं दैट इज द बेसिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और ये एक ऐसा भाग है नम्रता भक्ति का जिसको, जो बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, इसके बिना भक्ति करना मुश्किल। वैसे जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भजन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कि भजन, भजन मतलब भगवान की भक्ति करने में जो श्रेष्ठ है वो नवद्विध भक्ति। नवद्विध भक्ति के बारे में बताते हैं कि कोई भी जो अंग है इस भक्ति का, नवद्विध भक्ति का, वो आपको कृष्ण प्रेम दे सकता है। लेकिन फिर भी आगे क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तार मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, पर इनमें भी सबसे जो श्रेष्ठ है वो है हरिनाम का जप। निरअपराध नाम लैला पाए प्रेम, अगर आप अपराध से मुक्त होकर भगवान का नाम जपते हैं तो आपको क्या मिलता है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन श्रवणम जरूरी है, कोई भी अगर श्रवणम अपने आप में एक अंग है भक्ति का, लेकिन अगर आपने दूसरा अंग भी फॉलो करना है प्रॉपरली तो भी आपको कुछ तो श्रवण करना पड़ेगा भगवान के बारे में, समथिंग हैज टू बी देयर। सो यहां पर अगर आप भगवान के नाम के बारे में सुनेंगे, भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनेंगे, जिसके लिए प्रभुपाद लिखते हैं द भागवतम इज द बेस्ट बुक, आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, There is the best book is Srimad Bhagavatam. आप में से कोई डॉक्टरी लाइन से, anybody from doctor profession? नहीं ना? उसमें आप देखिए एक शरीर है, right? एक शरीर, सिंपल सा, 206 हड्डी वाला। इसको स्टडी करने के लिए आप देखिए कि MBBS में कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं, इतनी मोटी मोटी होती है ये किताब। फिर फर्दर वो करने के बाद MD आती है, राइट? MD में वो कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई थ्रोट स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, कोई पेट का स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, राइट? फर्दर फर्दर वो MD को DM स्टडी भी होती है, और आगे फर्दर DM। तो एक इतने से शरीर को समझने के लिए और उसके अलग अलग अंगों के बारे में एक एक अंग के ऊपर PhD हो रही है, लाइक DM Part 1 Part 2। और ये शरीर जो है जिस व्यक्ति ने बनाया है उसको समझने के लिए सिर्फ एक ही बुक काफी है, दैट इज श्रीमद् भागवत। प्रॉपर लिखते हैं कि दिस इज द बेस्ट बुक टू नो अबाउट कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए और हरि नाम का श्रवण करना चाहिए। इससे क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जन। और उसके बाद फिर जब चेतो दर्पण मार्जन होगा तो फिर क्या होगा, यू विल बी एबल टू सी द फॉर्म ऑफ कृष्ण। अगर श्रवणम अच्छा होगा, श्रवणम किस चीज का, श्रीमद् भागवतम का और हरि नाम का, अगर ये कंसंट्रेशन बढ़िया जप होगा, बढ़िया स्टडी होगा भागवतम का, तो फिर क्या होगा, भगवान की फॉर्म के दर्शन होते हैं। अभी भी सामने हो रहे हैं लेकिन जिस तरह से आप चाहते हैं, लाइक लाइव उस तरह से। और जब भगवान की फॉर्म के दर्शन होते हैं फिर भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है, क्वालिटीज के बारे में पता चलता है। और जब क्वालिटीज रिवील होती हैं भगवान की, फिर भगवान के एसोसिएट्स के बारे में पता लगता है, मीन्स भगवान के धाम के बारे में पता लगता है। नाम रूप गुण और लीला और धाम वगैरह ये सब प्रकट होता है धीरे धीरे। तो श्रवणम बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस भी DT में आपका लगाव है। अगर आप लॉर्ड रामचंद्र के भक्त हैं तो भगवान राम के विषय में श्रवण करेंगे, नरसिंह देव के भक्त हैं तो नरसिंह देव के बारे में, लेकिन फिर भी प्रॉपर लगते हैं द बेस्ट इज टू हियर अबाउट कृष्ण, इज कृष्ण इज आदि पुरुष, बाकी सब इन्हीं से आए हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान के नाम के विषय में, भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। अगर जैसे एक सिंपल सी उदाहरण होती है, किसी व्यक्ति के प्रति आप तभी आकृष्ट होते हैं जब आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता हो। रिलेशन बिल्डअप कैसे होता है? जैसे मैं सड़क पे अगर निकलूं, कई लोग चलते हैं सड़क पे, आई एम नॉट कंसर्न विद देम, या उनको मेरे साथ कोई कंसर्न नहीं है, क्यों? क्योंकि ना मैं उनके बारे में जानता हूं ना मेरे बारे में जानता हूं, राइट? बट जब हम बात करना शुरू करते हैं, जब एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं तो रिलेशन बिल्डअप होता है, राइट? उसी प्रकार से भगवान के साथ रिलेशन को स्ट्राइक करने के लिए भगवान के विषय में जानना जरूरी, अनलेस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्ण। जब तक आपको कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्ट्राइकिंग रिलेशनशिप विद कृष्ण। ये आप डिफरेंस अपने आप कर सकते हो जो रेगुलर जुड़े हुए हैं मंदिर में। आप जब टीटीज के सामने खड़े होते हैं, या एक बाहर का व्यक्ति जब आता है मंदिर में पहली बार आता है, उसका आप देखिए, उस यू कैन सी द डिफरेंस, कि जो ऑल्टर के सामने खड़ा होता है उसको पता ही नहीं होता मैं क्या करूँगा, व्हाट शुड आई डू, वो ऐसे ऐसे करके निकल जाता है बस, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ये करके चले जाते हैं। दे डोंट नो कि एक्चुअली कृष्णा इज स्टैंडिंग, तो देयर शुड बी रेसिप्रोकेशनल प्रेयर्स एंड ऑल, यू नो, वो फीलिंग। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं भक्ति में आने से पहले जो मंदिर जाना जो एक्सपीरियंस होता था विग्रह को देख के, और जब होता है वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बिकॉज अब हम कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। वैसे तो भगवान का नाम दोक्षा जैन को जाना नहीं जा सकता, लेकिन जो भी प्रॉपर की बुक्स के माध्यम से थोड़ा बहुत तो पता है कि भगवान क्या है क्या नहीं है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। तो और श्रवण करने के बाद भक्तिसनाथ सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि उसी चीज को रिपीट करना, भगवान के विषय में सुन के उसको रिपीट करना, दैट इज कीर्तन, दैट इज प्रीचिंग। कीर्तन आल्सो मींस जपा करना और प्रीचिंग करना, दैट इज कीर्तन, राइट? तो भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं कि अगर आपका कीर्तन अच्छा है, मींस अगर आपका जप अच्छा है, राइट, तो आपका श्रवणम एंड स्मरणम दोनों अच्छे। श्रवणम में क्योंकि नाम सुनना, हरि नाम को सुनना भी श्रवणम में आता है, तो आपका श्रवणम और स्मरणम अपने आप सही हो जाएगा अगर आपका कीर्तनम अच्छा है। तो जप करना बहुत जरूरी है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है हर भक्त के लिए, राइट?